मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 10 मार्च 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है हिमांशु सिंह, जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो हिमांशु, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस स्वागत के साथ ही बेहतर होगा, बाद में हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी में भूल जाऊं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं होली के उत्सव की, होली के पर्व की, होली के त्योहार की, कि यह होली का पर्व आप सबके लिए आने वाले वर्षों में एक उमंग की थाती लेकर आए, आपकी झोली में, आपके दामन में, आपके पर्स में, आपकी अंजुली में ढेर सारा उल्लास का भाव स्थायी रूप से स्थापित करें। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है शनिवार रविवार को डेली ऑडियो नहीं आता है और सोमवार को ही होली का पर्व है, यानी कि 3 दिन तक अब मैं आपके साथ बातचीत करने से वंचित रहूंगा। तो मेरी पूर्व शुभकामनाएं स्वीकार करें, और ये मेरी जो पूर्व शुभकामनाएं हैं मेरे सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से है, एकेडमी की मेरी पूरी टीम की तरफ से है, मैडम प्रीति अग्रवाल की तरफ से है और मेरी तरफ से भी है। तो दोस्तों, कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहूंगा कि अब जो डेली ऑडियो गाइडेंस है, ये डेली ऑडियो लेक्चर अब सीधे मंगलवार को ही आपको अवेलेबल होगा, लेकिन जो चीजें कंटिन्यू होती रही अभी तक वो उसी तरह से चलती रहेंगी। प्रेस क्लिपिंग्स आपको सैटरडे को मिलेगी, आपको प्रेस क्लिपिंग्स मंडे को भी मिलेंगी, ट्यूसडे को हो सकता है कि प्रेस क्लिपिंग्स ना आए क्योंकि कुछ ही अखबार छपते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ट्यूसडे से तो हम लोग डेली ऑडियो लेक्चर्स में शामिल हो ही जाएंगे। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आपको योजना और कुरुक्षेत्र हिंदी और इंग्लिश के एक एक, यानी कि टोटल 4 आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये आर्टिकल्स भी इस दिन इसलिए दिए जाते हैं फ्रेंड्स कि ताकि सैटरडे और संडे का आप अच्छी तरह से उपयोग कर सकें और इन आर्टिकल्स को पूरे ध्यान से, पूरे तवज्जो देते हुए पढ़ें। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको वीकली क्वेश्चंस एक दिया जाएगा जिस पर आपको काम करना है, सप्ताह भर काम करना है, इसको केवल लिख करके छुट्टी नहीं पा लेनी है। और फिर स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो हमारे क्लास स्टूडेंट्स को होता है वह उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इस सूचना के साथ ही अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर, और इसकी शुरुआत करते हैं हम AIR न्यूज से। फ्रेंड्स, AIR न्यूज में 2 खबरें थी जिनको आधार बनाकर मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। एक तो एग्जिट पोल को लेकर के था, दूसरा मातृत्व अवकाश को लेकर था। देखिए, जो एग्जिट पोल है इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। इससे पहले, कुछ साल पहले अगर आप पीछे चले जाएंगे तो हम देखते हैं कि 2 तरह के पोल आते थे, अनुमान है कह लीजिए कि चुनाव में कौन जीतेगा, किसे कितनी सीट मिलेंगी, क्या स्थितियां रहेंगी पार्टियों की, इनका पूर्वानुमान लगाना। तो पहले होता यह था कि यह ज्यादा पुराना नहीं है, ये लगभग समझ रहे कि भारत में ये 20-25 साल पुराना ही फिनोमिना है, इससे पहले ये चीजें नहीं होती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, इस तरह के फिनोमिना होने लगे क्योंकि आधार हमारे पास हो गए, टेक्नोलॉजी ने हमको कुछ ऐसे इनपुट प्रोवाइड कर दिए जिनके आधार पर हम बहुत से लोगों की राय जान सकते हैं। तो 25 साल मुश्किल से 20-25 साल पुराना ही ये फिनोमिना है। तो पहले दोस्तों, ये चुनाव के दौरान भी इस तरह के पोल्स आते रहते थे, अनुमान आते रहते थे, मतदान से पहले ही उनकी घोषणा भी कर दी जाती थी। जो भी इस तरह के अनुमानों में लगी रहती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें लगी रहती हैं, वो घोषित कर देती थी। बाद में चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, इस तरह की घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाया है और कर दिया है कि जब तक मतदान नहीं हो जाते तब तक इस तरह के जो पोल होते हैं, जिसे हम एग्जिट पोल कहते हैं, क्या रिजल्ट आएंगे, वो अनुमान अखबारों में, मीडिया में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। देखिए, इसका कारण बहुत स्पष्ट है। उस समय जब ये सब आते थे तो ये देखा गया कि बहुत से जो राजनीतिक दल हैं वो दूसरी अन्य संस्थाओं से जो इस तरह का काम कर रही हैं उनसे एक तरीके से तालमेल बिठाकर अपने फेवर में अनुमान निकलवा लेते थे या कहते थे कि भाई हमारे फेवर में दीजिए कि ये पार्टी इस पार्टी को इतनी सीट मिल रही है, यहां से ये जीत रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें मीडिया में आएंगी या लोगों को पता लगेंगी किसी भी माध्यम से, तो स्वाभाविक है कि जो मतदाता है उसके दिमाग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मतदाता में एक चीज तो होती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हो, कट्टरता तो उतनी होती नहीं है कि साहब हमको तो इसी में वोट दे, इसी को वोट देना है। कुछ सीमा तक है कट्टरता होती है, लेकिन सामान्यतः ज्यादातर मतदाता ऐसे होते हैं जो फेंस में मौजूद रहते हैं, मतलब या कह लीजिए कि जो मिलन बिंदु पर होते हैं, चीजों को देखते हैं, भांपते हैं और फिर मतदान कर देते हैं। तो ऐसे मतदाता जो फेंस पर होते हैं, जो बिल्कुल मीटिंग प्वाइंट पर होते हैं, वो बट नेचुरल है कि फिर जो पार्टी जीतने वाली है उधर चले जाते हैं, उनका झुकाव उधर हो जाता है कि भाई चलो ये पार्टी जीतने वाली है तो क्यों हम अपना वोट खराब करें, इसी को वोट दे दे। तो सीधी सी बात है कि इसका असर मतदाताओं के निर्णय पर सीधे सीधे पड़ता है, तो इसको लेकर के फिर बैन किया गया। इसलिए आपने देखा कि अभी जबकि कल 8 तारीख को जब चुनाव के बिल्कुल आंख हो गए, तो कल शाम से फिर ये एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं। एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि ये कितने सही है कितने गलत है। शुरुआत में तो थोड़े बहुत सही हुए, लेकिन बाद में इस तरह के पूर्वानुमान बहुत ज्यादा गलत भी हुए हैं। और ये भारत की तो बात छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल पर जैसे ब्रेक्सिट लीजिए कि ब्रिटेन को यूरोपीय समुदाय से अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर ब्रिटेन में जब मतदान कराया गया था तो जो इस तरह के सर्वेक्षण आ रहे थे, सर्वेक्षण कह लीजिए हिंदी में, वो यही आ रहे थे कि नहीं नहीं ब्रिटेन अलग होने की बात को रिजेक्ट कर देगा। और पता लगा कि जब रिजल्ट आए तो ब्रिटेन ने अलग होने की बात को स्वीकार कर लिया, मतलब जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे बिल्कुल अलग। और केवल ब्रिटेन की ही बात नहीं है, अमेरिका तक में अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं तो ट्रंप के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे, हिलेरी क्लिंटन जीतेंगे। और देखिए कि वहां भी मामला बिल्कुल उलट गया, जबकि वहां तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। तो दोस्तों, ये मैंने खासकर इस बात की चर्चा आपसे इसलिए की है क्योंकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू अब हमारी पॉलिटी और गवर्नेंस का हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन चुनाव का हिस्सा है, कि ये कितने सही है कितने गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों गलत होते हैं क्यों सही होते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में अगर उठ रहे हो तो इनका हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अब जबकि कल चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन पर भी सवाल उठेंगे, किसका अनुमान सही रहा, कितना सही रहा, क्यों गलत रहा, इन चीजों पर भी आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, एग्जिट पोल के बारे में ये बात थी। अब मैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूं, जो इससे कहीं कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है मातृत्व अवकाश। आपने मातृत्व अवकाश के बारे में एक खबर सुनी कि लोकसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया है, राज्यसभा पहले ही पारित कर चुकी थी और अब ये राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और जैसे ही वहां से हस्ताक्षर हो जाएंगे ये अधिनियम बन जाएगा। 12 सप्ताह से अब मातृत्व अवकाश की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। न्यूज में आपने सुना होगा, जिसको लेकर के मैं यहां खासकर चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि ये जो विधेयक है ये केवल संगठित क्षेत्रों के लिए है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं के लिए है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं के लिए नहीं। इसी बात को मैं थोड़ा सा आपसे आज शेयर करना चाहूंगा, जो सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा तो सोशल सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूं, के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसे कि सामान्य तौर पर तो आप जानते हैं कि हम जब उद्योग को बांटते हैं अर्थव्यवस्था को, तो कहते हैं कि कृषि क्षेत्र, फिर उद्योग का क्षेत्र, और फिर तीसरा हम कह देते हैं सेवा का क्षेत्र, चौथा आईटी सेक्टर एक अलग से आ रहा है, लेकिन अभी भी उसे हम सेवा के क्षेत्र में जानते हैं। ये तो सामान्य विभाजन है जो आप अर्थशास्त्र की किताबों में जनरली पढ़ते हैं, लेकिन एक और विभाजन है और वो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से संगठित हैं, जैसे सरकारी नौकरी पूरी तरह से संगठित है, बैंकिंग सिस्टम को देख लीजिए पूरी तरह से संगठित है, या जो बड़े बड़े उद्योग हैं चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, आप देखिए कि वो पूरी तरह से संगठित है। और वहां का संगठन किस तरीके का है कि बकायदे वो सरकारी तंत्र में रजिस्टर्ड है, बकायदे उनके अपने एक्ट बने हुए हैं पूरे के पूरे, मतलब वो जो गवर्न हो रहे हैं उनका जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो फैक्ट्री एक्ट के तहत, तहत है, बकायदे कंपनी लॉ के तहत है, वहां बकायदे बोनस एक्ट है तो लोगों को बोनस दिया जाता है, वहां प्रोविडेंट फंड का भी एक्ट है, वहां पर मिनिमम वेजेस का भी नियम लागू होता है, वहां पर बकायदे हर महीने या जिस जो भी सिस्टम हो उनको बकायदे सैलरी मिलती है, उनकी जॉब सिक्योरिटी भी होती है, ऐसा नहीं कि उनको आप कभी भी किसी भी समय हटा देंगे, उनके वर्किंग आवर्स भी ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, अगर वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कराया जाएगा तो उन्हें बकायदे ओवर टाइम दिया जाएगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी होगी, पेंशन फैसिलिटी होगी, हो सकता है कि ट्रेवल कंपनसेशन भी दिया जाए कि अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसका खर्च कंपनी देगी, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होती हैं। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि काफी लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं तो जो मजदूर होते हैं उनके अपने यूनियंस भी होती हैं, फिर वो जो यूनियन है वो अपने सदस्यों के हितों की चिंता करती है, मैनेजमेंट के साथ बातचीत करती है, ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है दोस्तों वो बिल्कुल इसके विपरीत है, एकदम विपरीत है। छोटे मोटे जो उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, लघु श्रेणी के उद्योग हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जहां कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। छोटे व्यापार हैं तो यहां इनका न तो कोई सरकारी तंत्र के साथ कोई रजिस्ट्रेशन होता है, न ये किसी एक्ट कानून के द्वारा संचालित होते हैं, न इनकी कोई मंथली सैलरी होती है, बल्कि यहां जो काम करने वाले लोग हैं वो डेली वेजेस के आधार पर काम करते हैं, रोज मजदूरी के आधार पर काम करते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इनको कभी भी निकाला जा सकता है, काम करने के घंटे कोई फिक्स नहीं होते, सामान्य तौर पर तो फिक्स होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि वो वहीं तक सीमित रहेंगे, सोशल सिक्योरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है कि इनको कोई पेंशन मिलेगी या कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। दोस्तों यहां जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत में आप सोच करके देखिए कि लगभग 94-95% जो पॉपुलेशन लेबर है वो केवल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, 94-95%, सोच करके देखिए, मात्र 5-6% ही वो लेबर फोर्स है जो यूं कह लीजिए कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मातृत्व अवकाश का भी जो लाभ है वो कितने एक बहुत ही छोटे से तबके को मिलेगा, और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसे हम बहुत ही छोटे छोटे लघु मध्यम उद्योग कह रहे हैं, जिसमें कौन आ रहे हैं, निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले को देखिए, रेडी लगाने वाले को देखिए, अपने सिर पर टोकरी लेकर के सामान बेच रहा है उसको देखिए, जूते के कारखाने में काम कर रहा है, रेडीमेड कपड़े की सिलाई कर रहा है, छोटी छोटी दुकानों में काम कर रहे हैं, जूते के पॉलिश कर रहे हैं, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर है, यहां तक कि कृषि मजदूर गांव में चले जाइए तो मजदूर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर है। और इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी आपको फिर दो भाग मिलेंगे, एक अर्बन एक रूरल। तो अर्बन में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर्स हैं उनकी स्थिति तो थोड़ी सी चली फिर भी बेहतर भी है, मतलब उनको थोड़ी सी सैलरी वैलरी ज्यादा, मतलब उनको जो मजदूरी है वो ज्यादा मिल जाती है, लेकिन उनके रहने की स्थितियां बहुत खराब होती है, झुग्गी झोपड़ी इन सब में रह रहे हैं, हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम होती है। और शहर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनकी तो स्थिति बहुत ही खराब है, रेगुलर बेसिस पर काम नहीं मिलता, मिलता भी है तो बहुत ही कम मजदूरी मिलती है, कभी कभी मिलेगी, अब ये बात ये अलग है कि मनरेगा ने उनकी स्थिति को थोड़ा सा बेहतर किया है। तो दोस्तों आप पाएंगे कि जो गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसमें रहने वालों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के तो मजदूर हैं ही, लेकिन उन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों में भी जो बड़ी संख्या है वो रूरल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों की है, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। और आप देखिए कि ये जो 94-95% जो वर्क फोर्स है इसमें से इनका जो नेशनल डोमेस्टिक इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है हमारे, सोच करके देखिए कि राष्ट्रीय घरेलू आय जो हमारी है उसमें 57% है। हालांकि ठीक है 94-95% लोग 57% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बहुत अच्छी स्थिति नहीं, इनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो ये जो नहीं कर पा रहे हैं ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि इस सेक्टर को कितने अधिक मदद की जरूरत है। ये और आप इसमें भी पाएंगे कि जो रूरल और अर्बन जो मैंने अभी आपसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर की बात की, इसमें से भी जो 5 करोड़ लेबर है टोटल, इसमें से 5 करोड़ लेबर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। सोच, इसमें से 3 करोड़ ऐसे लेबर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि तभी आप सही सिनेरियो को एनालाइज कर पाएंगे, सिनेरियो को सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। इसमें से लगभग 3 करोड़ ऐसे हैं जो मूवमेंट करते रहते हैं, जो माइग्रेंट होते रहते हैं, गांव से शहर आए, फिर लौट गए, एक शहर से दूसरे शहर चले गए। 3 करोड़ लोग, जिसको आप कह सकते हैं विस्थापित मजदूर तो नहीं कहेंगे, अभी मेरे दिमाग में तुरंत बात नहीं है, शब्द नहीं आ रहा है, माइग्रेंट लेबर आप कह लीजिए, विस्थापित मजदूर जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। सोच करके देखिए दोस्तों कि कितना, और अगर हम एक मजदूर के पीछे 4 लोगों के परिवार को मान ले, तो आप कह लीजिए कि 20 करोड़ लोगों की आबादी तो सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर की है। इसी से आप इनके इस जो गंभीर स्थिति है इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये एक अच्छी बात अब हुई है कि अब जो सरकार है अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर के बारे में भी सोचने लगी है, अब जबकि उनके जनधन खाते खोल दिए गए हैं, बीमा योजना भी जब शुरू कर दी गई है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर भी, ये जो इस सेक्टर में जो लेबर हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ पाएंगे, उनका भी जीवन स्तर थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जब तक इस सेक्टर के श्रम शक्ति का हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, इनका कौशल विकास नहीं करेंगे, इन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हम बहुत अच्छे अपने आर्थिक विकास की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी भारत का जो सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाला जो क्षेत्र है वो लघु और मध्यम उद्योग ही है, और इन्हीं लघु और मध्यम उद्योगों में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर काम कर रही हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो बट नेचुरल है फ्रेंड्स कि मातृत्व अवकाश का जो लाभ है वो इस सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो इसके माध्यम से मैंने आपके सामने एक इकोनॉमिक सिनेरियो रखने की कोशिश की जो सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने नौजवान साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, शुभम गुप्ता इलाहाबाद से, विनोद यादव, गौरव साहू, प्रमोद कुमार, माधव सिंह, शबाना खान और पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही मैं एक अपील करना चाहूंगा कि हमारे जो 6th बैच के स्टूडेंट अभी यहां क्लास से गए हैं, यहां से जाने के बाद वो अपने अंदर किस तरह का परिवर्तन महसूस कर रहे हैं या नहीं ही महसूस कर रहे हैं या थोड़ी बहुत हलचल है, प्लीज आप सब अपने अनुभवों को लिख करके अगर आप एकेडमी को अवगत कराएंगे तो इससे हम लोगों को आगे की योजनाओं के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अनुभव ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब इजाजत चाहूंगा और वो भी 3 दिनों के लिए। मित्रों मंगलवार को फिर मुलाकात होगी, तब हम फिर नए नए इश्यूज पर आगे बातें करेंगे। अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।